साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया, निशब्द पहले जाया तेरे सहारे, अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा। सपनों की उड़ाने तुमसे जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा।
ओम शांति। किसी गांव का तथाकथित धार्मिक पंडित जब मंदिर से लौट रहा था तो उस पंडित ने देखा आम का बगीचा है और रसीले आम लगे हुए हैं, पर बगीचा किसी और का था। पर आम को देखकर मुंह में पानी आ गया और उसने कहा अपने आप से कि कोई देख तो नहीं रहा है, क्यों ना कुछ आम। पहले उसने शब्द प्रयोग किया चुरा लूं, फिर कहा चुराना शब्द अच्छा नहीं है क्योंकि ये प्रकृति की देन है और प्रकृति ने हम सब के लिए आम बनाए हैं, इसलिए हर आम पर हर व्यक्ति का अधिकार है, इसलिए मुझे आम खाने ही चाहिए। सभी भूमि गोपाल की और संसार में जो भी भूमि है एक परमात्मा की है, इसलिए सारे पेड़ उस परमात्मा के और सारे आम भी उस परमात्मा के हैं, और परमात्मा की हर वस्तु पर मनुष्य का अधिकार है। इस तरह की बातें वह स्वयं को समझाता है और वो धार्मिक पंडित उस बगीचे में घुस जाता है और पेड़ों के आम तोड़ता है और अपनी झोली में आम भर लेता है, और जब झोली आम से भर जाती है उसी समय मालिक वहां आ जाता है। वो मालिक उस पंडित जी को पकड़ लेता है और वो मालिक कहता है आप तो गांव के मंदिर के पुजारी हो, सबसे बड़े पंडित हो, अपने आप को धार्मिक कहलाते हो, आपको चोरी करने में शर्म नहीं आती। पंडित जी कहते चोरी कैसी चोरी, मैं तो वहां से गुजर रहा था, इतनी जोर से आंधी तूफान आया कि मैं न चाहते हुए भी इस बगीचे में, तूफान इतना तेज था कि उस तूफान ने मुझे यहां फेंक दिया। उस मालिक ने कहा, चलो वैसे तूफान तो है नहीं, पर तुम कह रहे हो तूफान है या था, और उस तूफान ने तुमको अंदर फेंक दिया। चलो ये भी मान लिया, पर तुम्हारे हाथ में जो दो आम पकड़े हैं उसका क्या? क्योंकि उसने तभी उस व्यक्ति को पकड़ा था जब उसके दोनों हाथों में आम थे। तब वो पंडित जी कहते, वही तो मैं तुमसे कह रहा था कि हवा इतनी तेज थी कि मैंने अपने आप को बचाने के लिए, रोकने के लिए दोनों आम पकड़ लिए। वैसे तो पेड़ की डालियां पकड़ना चाहता था, पर हाथ में आम आ गए। वो मालिक कहता, चलो ये भी मान लिया कि आंधी तेज थी और तुम यहां फेंके गए, और अपने आप को रोकने के लिए तुमने पेड़ को पकड़ा पर हाथ में आम आ गया, पर वो जो तुम्हारा थैला आम से भरा है उसका क्या? वो थैला अपने आप कैसे भर गया आम से? तो वो धार्मिक व्यक्ति कहता है, क्या सारे प्रश्न के उत्तर मुझे ही पता है? अब तुम ये भी पूछोगे कि आम में गुठली कहां से आई? वही तो मैं ही बैठ के सोच रहा हूं कि इस थैले में आम आए कहां से। इसे कहा जाता है डिफेंसिव मैकेनिज्म, खुद को बचाना। और ऐसे ये 12 है जिनकी हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले इसकी चर्चा क्यों करेंगे? क्योंकि आज की वाणी में बाबा ने ये एक शब्द प्रयोग किया है, बगुला भक्त। भक्ति तो वैसे सर्वश्रेष्ठ है। सच्चे भक्त इस संसार का श्रृंगार है, थे। इन्हीं भक्तों ने, इनकी ही भक्ति ने, इन्हीं सन्यासी ने और इनकी पवित्रता ने द्वापर से इस संसार को थाम के रखा है। परंतु जैसे हर चीज में गिरावट आई, उसी तरह भक्ति में भी गिरावट आई। भक्ति भी अलग अलग स्टेशन से गुजरी है, और वर्तमान जो भक्ति है उसमें मिलावट है, धोखा है, तमोप्रधान है, स्वार्थ है, छल कपट है। तो इनके 5 लक्षण इस मुरली में बाबा ने सुनाए हैं। पहला, अधीनता। वो क्या होते हैं? अधीन, निर्भर। और ज्ञानियों को बाबा पूछ रहे हैं, भक्ति का अंश या वंश तो नहीं, अर्थात निर्भरता किस पर, अधीनता किस पर? कोई संस्कार या स्वभाव पर। दूसरा लक्षण है मांगना। मांगता, मांगना। भक्ति में क्या होता है? मांगना। और यहां क्या है? नाम मान शान का मांगता। एक तरफ भक्ति और एक तरफ फिर ज्ञानी भक्त, जिसको बाबा ने कहा बगुला भक्त तो नहीं हो। तीसरा है पुकारना। क्या क्यों पुकारते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं? एक तो भक्ति का पुकारना, और इधर फिर ज्ञान में क्वेश्चन करते हैं, चिल्लाते हैं, क्या और क्यों? चौथा, इन्फीरियोरिटी, स्वयं को संपन्नता से दूर समझना, स्वयं को छोटा समझते। और पांचवा, धोखा देना, अंदर एक बाहर दूसरा, अंदर एक और बाहर दूसरा, खौफनाक किसी मुरली में बाबा ने इन आत्माओं को कहा था। तो ये पांच बातें हैं भक्ति की। बाबा ने कहा कि अपने आप में देखो, भक्ति का अंश भक्ति का वंश तो नहीं है। ये है बगुला भक्त। सबसे पहली बात अधीन, निर्भरता, अधीनता, डिपेंडेंट, स्वयं का अपना कोई डिसीजन नहीं है, स्वयं का कोई चिंतन नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, सारा चिंतन बाहर से लिया है, उधार लिया है। स्वयं का अपना कोई निर्णय जीवन का नहीं है, दूसरे कह रहे हैं ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, वो है बगुला भक्त, जो अधीन है, किसी संस्कार के अधीन है, किसी व्यक्ति के अधीन है, किसी वस्तु के अधीन है, किसी विषय के अधीन है। अंदर एक, बाहर दूसरा, छल कपट का प्रतीक है, लोमड़ी, चालाक, अधीनता, किसी वस्तु पर अधीनता। विष जो होता है वो खाने से व्यक्ति एक बार मर जाता है, पर विषय जो होते हैं वो विष की तरह है, परंतु धीरे धीरे मरते हैं, खा खा के मरते हैं, विषय भोग। तो भक्तों की, बगुला भक्त की पहली निशानी अधीन। तो यहां पर कहा स्वभाव और संस्कार के अधीन तो नहीं। दूसरी निशानी, मांगते रहते हैं कुछ ना कुछ चाहिए। यहां पर क्या मांगते रहते हैं? नाम, मान और शान। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए। दूसरे अगर सम्मान करे तो ही हमें खुशी होती है, दूसरे यदि मान दे तो ही खुशी होती है। अगर ना दे तो अंदर आत्मग्लानि आती है, या फिर इन्फियोरिटी आती है कि हम कम है। हम अपना मूल्यांकन दूसरों के विचारों द्वारा करते हैं। दूसरे हमें महान मानते हैं तो हम महान समझते हैं। दूसरे हमें कहते हैं तुम बहुत सुंदर हो, तब हमारे अंदर एक धारणा बैठ जाती है कि मैं सुंदर हूं। और जब दूसरे कहते हैं कि तुम सुंदर नहीं तुम कुरूप हो, तब हम अपने अंदर सोचते हैं कि मैं ठीक नहीं दिखता। तो हम अपना मूल्यांकन दूसरों के विचारों के आधार पर करते हैं, हमारा अपना कोई मूल्यांकन नहीं है। तो मांगना, तीसरा बताया पुकारना, भक्ति में पुकारते रहते हैं पुकारते रहते हैं। और यहां पर भी चिल्लाना और पुकारना अर्थात कोई क्वेश्चंस, क्या क्यों क्या क्यों क्या क्यों, पुकारते रहते हैं चिल्लाते रहते हैं। चौथा, पांचवा, स्वयं को धोखा देना। बगीचे में कैसे पहुंचा? आंधी लेके आई, आम हाथ में कहां से आए, पकड़ते पकड़ते। और थैली में आम कहां से आए वो तो मैं भी सोच रहा हूं। इसको कहा जाता है खुद को खुद धोखा देना। और ये खुद को खुद धोखा देना संसारी आत्माओं में से ज्यादा धार्मिक व्यक्तियों में ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि संसारी व्यक्ति तो सीधा झूठ बोलता है और मानता भी है मैंने झूठ बोला। पर जो धर्म में चलते हैं और अध्यात्म को मानते हैं, वो जब कोई गलती करते हैं तो फिर उनका झूठ मॉडिफाइड, युक्तियुक्त, राजयुक्त, बहुत मॉडर्नाइज्ड, स्पिरिचुअलाइज्ड, झूठ होता है। तो आज तो इसी मुरली में और एक चीज बाबा ने कही है, सत्य बाप के आगे केवल सत्य ही स्वीकार होता है, असत्य स्वीकार नहीं होता है, झूठ स्वीकार नहीं होता है, पाप के खाते में जाता है, बाप के खाते में नहीं जाता है। सत्य बाप के आगे सत्य ही स्वीकार होता है। सेल्फ डिसेप्शन यहाँ चल, सब द वर्स्ट ऑफ ऑल द डिसेप्शन इज सेल्फ डिसेप्शन। तो जैसे कहा, इस सेल्फ डिसेप्शन के 12 प्रकार है। खुद को धोखा देना, अंदर एक बाहर दूसरा। तो ये पांच निशानियां हैं बगुला भक्त की। बाबा ने कहा अपने अंदर देखो, अंश तो नहीं, वंश तो नहीं। तो वो 12 कौन कौन से हैं? सबसे पहला डिनायल। डिनायल अर्थात स्वीकार ही नहीं करता। व्यक्ति दिन रात दारू पीते रहता है पर वो स्वीकार नहीं करता, और ये कहता है कि मुझे हैबिट नहीं है, मैं जब चाहूं तब बंद भी कर सकता, चाय पीते तो है 3-4 बार चाय, पर अगर कहो कि चाय की तुमको आदत तो नहीं है, नहीं, अगर नहीं मिला तो भी चलेगा, अभी है इसलिए पी रहा हूं। तो इस बिहेवियर को कहा जाता है सेल्फ डिसेप्टिव बिहेवियर। इसे ऐसे 12 प्रकार है। तो सबसे पहला है डिनायल, स्वीकार ही नहीं करना। पेशेंट बीमार है पर वो स्वीकार ही नहीं करता, मन डिस्टर्ब्ड है पर स्वीकार ही नहीं करता है, सारे रिपोर्ट नॉर्मल है और कंप्लेंट ढेर सारी है। व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करता कि बीमारी शरीर में नहीं है, मन में है। तो ये डिनायल कहा जाता है। दूसरा है रैशनलाइजेशन। जैसे कहानी में सुनाया, कितना सारा रैशनलाइजेशन कर दिया। ये संसार का कोई व्यक्ति होता तो कहता था कि मैंने चोरी की, परंतु ये धार्मिक पुजारी और पंडित है इसलिए उसको इतनी बड़ी कहानी बनानी पड़ी। अपने मन को भी कितना समझाना पड़ा, सवय भूमि गोपाल की, सारे आम परमात्मा के हैं, पेड़ सारे उसके हैं, और हम ना खाए तो कौन खाएगा। अपने मन को इतनी बड़ी कहानी बनानी पड़ी, दूसरों को इतनी बड़ी कहानी सुनानी पड़ी। इसे कहा जाता है रैशनलाइजेशन। लेट क्यों हो गए, बारिश आ गई, पर जब निकल रहे थे तब बारिश नहीं थी और ना ही कोई उसका ये था, ट्रैफिक थी इसलिए लेट। साइकिल से आ रहे थे, साइकिल का टायर ही पंक्चर हो गया। बस से क्यों नहीं है, बस का भी टायर पंक्चर होता है, पर कभी कभी पेट्रोल ही खत्म हो गया, क्या करें अब, कपड़े ही गीले थे, क्या पहने, चप्पल ही टूट गई आते आते, क्या करें। इन सबको कहा जाता है रैशनलाइजेशन। सेकंड, थर्ड प्रोजेक्शन। थर्ड क्या है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन अर्थात मैं दूसरों से ईर्ष्या करता हूं पर कहता हूं वो मुझसे ईर्ष्या करता है, करता मैं हूं कि आगे क्यों बढ़ रहा है, पर कहना क्या दूसरों को कि वो मुझसे ईर्ष्या करता है कि मैं आगे क्यों बढ़ रहा हूं। इसको कहा जाता है प्रोजेक्शन। स्वयं स्वयं को धोखा देना, अंदर एक बाहर एक, सत्य बाप के सामने झूठ स्वीकार नहीं होता, ये सारे मुरली के महावाक्य है। तो उसमें प्रोजेक्शन भी एक आता है। चौथा डिस्प्लेसमेंट। बॉस ने आपको डांटा, आप जाके पत्नी को डांटते हैं और पत्नी बच्चों को डांटती है, बच्चे उसके जो फ्रेंड्स हैं छोटी उम्र वाले और कमजोर उसको पकड़कर पीटते हैं या तो कुत्तों को मार के आते हैं। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। बॉस के सामने तो कुछ बोल नहीं सकते, बॉस ने जो हमको सुनाया वो जाकर हम अपने जूनियर को सुनाते। बॉस ने कहा तुमको समझता नहीं, तुमको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। बिल्कुल ये इनडिसिप्लिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बॉस के केबिन से निकलते हो और आपका जूनियर टकराता है तो वही पॉइंट्स, सेम पॉइंट्स उसको आप वैसे के वैसे सुनाते हो। इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक क्या है, डिफेंसिव बिहेवियर है। अगला रिप्रेशन, दबा देना। अंदर बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, पर उसको दबा दिया है, खत्म नहीं किया है, दबाया है, इसलिए वो बीच बीच में निकलते रहता है। किसी ने बहुत हर्ट कर दिया, हम हर्ट हो गए, दुखी हो गए, पर हम दिखा नहीं रहे कि हम हर्ट हो गए, पर हुए हैं। पर क्यों नहीं दिखा रहे? ज्ञान योग स्थित प्रज्ञ योगी ब्राह्मण परिवार, रोना नहीं, दूसरों को हमने अपने आप को ज्ञानी सिद्ध किया है। स्वामी विवेकानंद की जो बहन थी उसकी मृत्यु हो गई थी तो वो रोने लगे। बाकियों ने कहा अरे तुम सन्यासी हो, सन्यासी हो के रोते हो? उन्होंने कहा मैं सन्यासी हूं, दीवार थोड़ी ना हूं, तो निकल जाने दो आंसू, दबाव नहीं, हम ज्ञानी है, बाबा ने कहा है रोना प्रूफ बनो, पर अंदर दर्द है, अंदर दुख है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा मुक्ति नहीं है, कैथारसिस जब तक नहीं होगा निकल जाना चाहिए पूरा। रिप्रेशन अर्थात सप्रेस किया हुआ, दमन हुआ है, रिप्रेशन मतलब दमन, दमन किया है, भावनाओं का दमन किया, इच्छाएं बहुत थी पर सब दब गई, इच्छाएं बहुत थी ये करूं वो करूं, इच्छाओं को टेम नहीं किया, ट्रेनिंग नहीं दी, डोमेस्टिकेट नहीं किया है, वो अभी भी जंगली है, पालतू नहीं बनाया उनको। जब बाहर निकलती है तो तूफान मचाती है, तो इसे कहा जाता है दमन। ये भी एक झूठ का ही प्रकार है, क्योंकि इसमें आप अंदर एक और बाहर दूसरा है, अंदर से दिखा रहे नहीं 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 नहीं, एक लाख का गुप्त दान किया है, पर मंच संचालक को कहा कि इतना तो अनाउंस करो कम से कम कि 1 लाख का गुप्त दान किया है, गुप्त, बाकी मुझे चाहिए कुछ नहीं, पर कम से कम इतना तो बताओ कि किसी ने 1 लाख का गुप्त दान किया है। मंच संचालक ने अनाउंस किया कि किसी ने, एक महान विभूति ने, धार्मिक व्यक्ति ने 1 लाख का इस भक्ति सत्संग के लिए गुप्त दान किया है, हजारों की सभा बैठी है, पर इतने से चयन थोड़ी ना आता है। अब ये बताना थोड़ा सा कि वो जिसने किया है वो इसी सभा में है कहीं, तो इतना तो बताओ। तो कहते नाम भी बता, नहीं नहीं नाम थोड़ी ना बताना होता, गुप्त दान है। चलो ठीक है, संचालक ने अनाउंस किया कि कोई एक महानुभाव है जिसने हमारी संस्था को 1 लाख का गुप्त दान है, और वो व्यक्ति आज हमारी ही सभा में बैठे है, पर इतने से भी चयन थोड़ी ना हुआ, चयन नहीं मिलती, थोड़ा और बताओ कुछ कि जिसने गुप्त दान किया है वो सभा में तो है और मंच पर बैठे है इस समय, तो नाम ही बता देता हूं, नहीं नहीं नाम नहीं बताना, क्योंकि दान कैसा है, गुप्त। अनाउंसमेंट हुई फिर से कि एक महानुभाव ने 1 लाख का गुप्त दान किया है और वो हमारी ही सभा में है और वो इस समय मंच पर बैठे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट, पर इससे चैन थोड़ी ना मिला, थोड़ा इतना तो बताओ कि वो मेरे बाजू साइड में बैठे हुए हैं। फिर से बताया कि वो मेरे बाजू ही बैठे हैं, पर उससे भी चैन नहीं मिली ना, बाजू में चौथे नंबर पर बैठे हैं। फिर से तालियां बजी। तो नाम ही बता देते पर नाम नहीं बताना, क्योंकि दान कैसा है? गुप्त है। तो ये है। और बैंक में जब चेक लेके गए तो पता चला उसमें नाम ही नहीं है चेक पर। तो बोले कैसे नाम ही नहीं है? तो बोले गुप्त दान तो है ना, वो तो पहले ही तो बोला था। अगला, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, मतलब जो मेन मुद्दा है उसको छोड़कर तर्क वितर्क पे चले जाना, जो इमोशंस है उसको हटाकर तर्क 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 करना। जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया और कोई ब्लीड कर रहा है, तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, क्यों एक्सीडेंट हुआ, तुम किस तरफ से चल रहे थे, उस समय पेशेंट का ट्रीटमेंट करना आवश्यक। पर ये इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, जो बाकी के इंटेलेक्चुअल प्रश्नों में जा रहे हैं, उस समय आवश्यकता क्या है, तुरंत इलाज करना या तुरंत मदद करना, बजाय इसके कि बाकी और प्रश्न पूछते रहना। संडे की मुरली, आग, तो वो ये थोड़ी ना पूछते किसने लगाई, वो कहाँ है, उसको पकड़ो पहले जिसने आग लगा के भाग गया, वो नहीं पूछते। उस समय उनका कर्तव्य क्या है, आग को बुझाना, विदाउट एनी इंटेलेक्चुअलाइजेशन, प्रोवाइड हेल्प। तो ये करना, ये भी अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना, या एक अलग प्रकार का डिफेंस माइंड का मैकेनिज्म है। अगला है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन अर्थात सीरियस बात हुई है पर बहुत हल्के में लेना, बहुत सीरियस बात है, अपनी बड़ी गलती को ऐसे दिखाना कि ये तो बहुत ही छोटा है, अपने बड़े पाप को ऐसे दिखाना ये पाप है ही नहीं, इसको कहते हैं मिनिमाइजेशन। बहुत सारा पी रखा है किसी ने, उसको कहते हैं कुछ नहीं, थोड़ा सा ही लिया है, एंड आई एम फाइन टू ड्राइव, इसको कहते हैं मिनिमाइजेशन। हमसे बड़े बड़े पापी तो कितने हैं यहाँ, हमारा तो कुछ भी नहीं है, वो अलग ये अलग, ये मिनिमाइजेशन। 7 नंबर का है मिनिमाइजेशन, अपनी नहीं छिपाना नहीं बताना, पर उसको इतना नहीं समझना ये छोटा है, कम बताना उसको, है बहुत बड़ी सीरियस गलती, पर उसको बिल्कुल ऐसे बताना जैसे कुछ भी नहीं है, हो गया ऐसे कहते कहते समय भी ये रियलाइजेशन नहीं है कि ये बहुत बड़ी गलती है या पाप है, पश्चाताप का तो है ही नहीं कुछ, जीरो पश्चाताप। भूख लग गई थी तो थोड़े देखे बाहर, खा लिया बाबा की याद में, दृष्टि देकर, मजबूरी की हालत में, बाबा ने कहा है मजबूरी की हालत में खा सकते हैं दृष्टि देकर, बाबा का ये महावाक्य का तुरंत आंखें बंद करके स्मरण किया, फिर बाबा को याद किया और समोसा लिया और बाबा की याद में धीरे धीरे खा लिया। मिनिमाइजेशन, बिस्किट खाते रहते हैं, सब कुछ खाते रहते हैं, मशीन का है, अपने आप काम करती है कि मशीन। अगला, ब्लेम शिफ्टिंग, ये मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है पता है, बॉस ही ठीक नहीं है, बाकियों को प्रमोशन देता है मुझे प्रमोशन नहीं देता है, सारा ब्लेम शिफ्ट कर देना। ब्लेम गेम सबसे ज्यादा गेम है, सबसे जास्ती खेला जाने वाला गेम कौन सा है दुनिया में, ब्लेम गेम, दूसरों को ब्लेम करना, क्यों नहीं कर पाए, हमारे पेरेंट्स ही ऐसे थे, बचपन से उन्होंने अच्छे स्कूल में डालना चाहिए था, इंग्लिश मीडियम में, वो नहीं किया, पेरेंट्स को ब्लेम, कंपनी को ब्लेम, डिपार्टमेंट को ब्लेम, ऑफिस को ब्लेम, हर व्यक्ति जहां काम कर रहा है, जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जो सेवा कर रहा है, वो उसने अपने संकल्पों द्वारा, अपने अहंकार द्वारा, अपनी योग्यता द्वारा या अपनी कमजोरी के द्वारा या विशेषता द्वारा अर्जित किए वो स्थान, या तो अहंकार के द्वारा या विशेषता द्वारा या कोई कमी के द्वारा। इसलिए वो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें हैं, इसलिए किसको क्या ब्लेम करें। एंट्री ही वैसे की है, कोई एंट्री कर रहा है संपूर्ण समर्पण से, वो कहां के कहां पहुंच जाता है। कोई एंट्री ही कर रहा है डाउट के साथ, स्वार्थ के साथ, भय के साथ, सेल्फ डाउट के साथ, संशय के साथ, मेरा क्या होगा, मुझे क्या क्या मिलेगा, अहंकार के साथ, ईगो के साथ या फिर इच्छाओं के साथ, तो उसको प्राप्ति भी उसी अनुसार मिलेगी। ये यज्ञ वो वृक्ष है मनोवांछित फल प्राप्त कराने वाला, ये यज्ञ चिंतामणि है, वो मणि है जिसको जो चाहिए वो उसको प्राप्त होता है। अगला ब्लेम गेम, अगला सेल्फ डिल्यूजन, अपने आप को एक भ्रम में रखना। हाँ मैंने लॉटरी खरीदी, मैं जीत लूंगा, मैं जीतने ही वाला हूं लॉटरी, एक बहुत ही कम संभावना है। नहीं नहीं हमारा पेशेंट बच जाएगा, जबकि डॉक्टर कह रहा है पेशेंट मरने वाला है, नहीं नहीं वो बचेगा, कम संभावना है। ऐसे होते हैं बहुत सारे रिलेटिव्स, वो स्वीकार करने को ही तैयार नहीं होते कि बीमारी इतनी बढ़ गई है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। सब कुछ करते करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। एक मरीज मर रहा है, एक सबसे बड़े डॉक्टर उसको देख रहे हैं स्पेशलिस्ट, और मरीज को डायरेक्ट बोल रहे हैं, विदेश में तो डायरेक्ट बातें होती है कि कैंसर तुम्हारे शरीर में सब तरफ फैल गया है, तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या। वो कहता है यस सेकेंड ओपिनियन, आई नीड सेकेंड ओपिनियन, तुम पर विश्वास नहीं है, कोई और लेके आओ किसी और को। होपिंग अगेंस्ट द होप कहा जाता है इसे इंग्लिश में। ऑड्स आर टू लो येट होप्स आर वेरी हाई, इसको कहते हैं सेल्फ डिल्यूजन, एक भ्रम में जीना। जिस तरह की दिनचर्या आज है और सोच रहे हैं कि हम संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे, कभी नहीं होगा। अगला लाइंग टू वन सेल्फ, अपने आप से झूठ बोलना। मैं सोशल मीडिया से एडिक्ट नहीं हूं, मैं कभी भी बंद कर सकता हूं, जबकि रोज दो दो घंटे वो यूट्यूब क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट्स और रील्स, टिकटॉक, फेसबुक, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। कई देशों में बैन हो गया, फिर उठ गया बैन। तो खुद झूठ बोलना, अपने आप से झूठ बोलना, दूसरों से नहीं, खुद से ही झूठ बोलना कि नहीं नहीं मुझे एडिक्शन नहीं है, जबकि एडिक्ट हो चुके हो। अगला अवॉइडेंस, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं, क्योंकि वो रिपोर्ट करेगा ना कुछ ना गड़बड़ निकलना ही है, और वी डोंट वांट टू हियर बैड न्यूज, जरूर कुछ ना कुछ तो बैड न्यूज हमको सुननी नहीं, अवॉइड करने का जानबूझ के। ये एक उदाहरण हुआ, ऐसे कई सारी चीजें हो सकती है जो हम अवॉइड करना चाहते, पर अवॉइड करने के पीछे कारण क्या है, भय। अगर निर्भयता अंदर है तो कभी अवॉइड नहीं करेंगे। हाँ कहीं निकल गया अंदर का झूठ तो उसको कहते हैं अवॉइडेंस। और 12वां सेल्फ जस्टिफिकेशन, मतलब 7 दिन तो अभी मैंने ये खाया तुम लोगों ने जैसा बताया, अब एक दिन तो छुट्टी का है तो चीटिंग का दिन है। व्यक्ति सोचता है रोज दारू कितने दिन पीऊं, पंख संकल्प करते हैं आज के बाद दारू बंद, दारू पूरी बंद कर देता है, 15 दिन तक एक बार भी नहीं पीता, और 16वें दिन सोचता है आज तो मैंने सफल हो गया, मैं जो मैंने सोचा था वो कर लिया, और इसी खुशी में आज पार्टी। इसको कहते हैं सेल्फ जस्टिफिकेशन, खुद को खुद ही जस्टिफाई करना। और आदर क्या है? एक्सक्यूज है, जो संडे की मुरली में था, ये कारण ये कारण ये कारण, कारण देते रहते। तो ये कितने हो गए? 12। तो बगुला भक्त अर्थात पहला अधीन, दूसरा मांगते रहने वाले, दूसरा चिल्लाने वाले, और चौथा संपन्नता से स्वयं को दूर समझना, कम समझना स्वयं को। ये दूसरे बहुत अच्छे, ये तो बहुत पुराने लोग हैं, ये कब से चल रहे हैं, कब से मुरलियां पढ़ रहे हैं, हम तो अभी अभी पढ़ना चालू किए, ये सोचना। इनको तो सब आता ही है, इनको तो आदत हो गई है, हमको थोड़ी आदत है, हमने थोड़ी ना, हमने तो अभी अभी चालू किया है। इनकी प्रैक्टिस बहुत है, हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं है, ये तो पहले से ही एक्सरसाइज करते हैं। इनकी तो बुद्धि बहुत अच्छी है, इनकी मेमोरी पावर ही बहुत ज्यादा है, हमारा तो पहले ही उम्र हो गई और याद भी नहीं रहता है कुछ, इस उम्र में क्या आप करें। ये एक्सरसाइज वगैरह तो बच्चे ये सब करते हैं, हम लोगों का बस की बात नहीं है। तो ये कितनी होगी? 5 बातें। अब ज्ञानी तू आत्मा क्या चित्र बनाओ, इसी मुरली में बाबा ने कहा है, उसकी 5 बातें हैं। तुमको क्या करना है? जैसे श्री कृष्ण का चित्र है, उसमें ताज तख्त और तिलक दिखा है, जैसे श्री कृष्ण का तिलक है, गोल्डन स्पून इन माउथ, जैसे श्री कृष्ण का चित्र है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जैसे श्री कृष्ण का चित्र है, प्रकृति जीत है, माया जीत है, संपन्न है, संपूर्ण है, वैसे ही तुम अपना ज्ञानी तू आत्मा का चित्र बनाओ। उसमें 5 बात है। ताज, तख्त, तिलक, स्पून और गहने। पहला है ताज, वो भी 2 ताज है। कौन कौन से 2 ताज? एक तो विश्व कल्याणकारी की जो जिम्मेवारी है उसका ताज, वो ताज पहने हुए। दूसरा ताज प्यूरिटी का ताज। दूसरा तख्त है, तख्त कौन सा? दिल, भगवान के दिल के तख्त पर कौन बैठ सकते हैं? जो अव्यक्तवाणी, भगवान के दिल तख्त पर कौन बैठ सकते हैं? जो मास्टर सर्वशक्तिवान के समान के सीट पर स्थित है। ये किसी और मुरली में था। तो यहां 2 तख्त बताए, एक तो साक्षी का तख्त और दूसरा दिल तख्त। और तिलक, तिलक एक ही बताया, पर तिलक तो बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ आत्मिक स्मृति के स्वरूप के स्मृति का तिलक, पर तिलक बहुत सारे हैं। अगला गहने, ज्ञान के गहने, गुणों के गहने, और फिर गोल्डन स्पून इन माउथ, अर्थात सारी जो संपत्ति है वो सारी संपत्ति गिनाई है, जो बाप की संपत्ति वो तुम्हारी संपत्ति। तो ज्ञानी तू आत्मा का बाबा ने क्या कहा? एक चित्र बनाओ, जैसे श्री कृष्ण का चित्र, ये चित्र बनाओ। ये चित्र जब बन जाएगा, जब मूर्ति बन जाएगी, तब पर्दा खुलेगा और खंडित मूर्ति अर्थात जिसमें कमी आए, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। तुम्हें दर्शन मूर्ति बनना है, तुम्हें संपन्न मूर्ति बनना है। दर्शन मूर्ति, संपन्न मूर्ति, अखंडित मूर्ति, तो ही तुम भविष्य में ये जो चित्र होगा तब वो चित्र उधर होगा। अभी निर्विवाद राजा बन जाओ। तो आज का होमवर्क नंबर 1, एक चित्र बनाना ऐसा फेस का, उसमें ऊपर लिखो माय ड्यूअल सेल्फ पोर्ट्रेट, एक आउटर जो मैं दिखाता हूं लोगों को और जो मैं हूं। खतरनाक चित्र है ये, जो मैं हूं ही नहीं वो पर दिखाता हूं लोगों को, ये हूं, जैसे ज्ञानी हूं। हाँ, वो अपने पॉइंट्स लिखने, ऐसे पॉइंट्स लिखने, अपना मैं जो हूं अज्ञानी, दिखाता हूं ज्ञानी, हूं धोखेबाज, दिखाता हूं सच्चा, दुखा अंदर हूं ढोंगी और दिखाता हूं महायोगी, अंदर हूं बगुला, बाहर दिखाता हूं हंस। हंस निशानी है सच्चाई की, बगुला निशानी है धोखे की। शूद्र, म्लेच्छ, तो ये लिखना है अपने अपने पॉइंट्स। तो आउटर सेल्फ, इनर सेल्फ कैसे निकाले? कैसे निकाले? हाँ,
तो
एक तो स्वयं के धोखे से बचना है, दूसरा दूसरों के धोखे से बचना है। उसका एक गेम होता है, उसको कहते हैं ट्रस्ट वॉक। एक पट्टी है क्या, काली या नीली, या किसी माता के पास कोई दुपट्टा या कुछ है, रुमाल टाइप। हाँ वो, और दूसरा कुछ है काला थोड़ा, ब्लैक नहीं दिखेगा, तो उसको दे दो। तो सुशील भाई के आंखों पर पट्टी बांध दो। तो आपको पहले एक बार रुको, आंख खोलो एक बार देखने दो। नहीं, इसको कहते हैं ट्रस्ट वॉक। पहले आपको सुशील भाई देख लो। तो आपको क्या करना है, आपको पहले वो पीछे नागराज भाई है वहां तक पहुंचना है, ठीक है। और ये सारी सभा आपको भ्रमित करेगी, मिसगाइड करेगी आपको, इधर जाओ उधर जाओ। एक्चुअली ये गेम बड़े हॉल में खेला जाता है, पर हम यही खेलेंगे। तो बीच में जितनी पब्लिक है वो आपको गलत मार्ग बताएगी, पर आपको सुनना नहीं है, सुनना है अपने मन की। आपको कहेंगे इधर जाओ उधर जाओ, इधर से पलटो उधर से पलटो, और हम लोग जानबूझकर आपके मार्ग में विघ्न उत्पन्न करके रखेंगे, घुमा घुमा के। तो एक भाई इधर बैठ जाओ, एक भाई उधर बैठ जाओ, कोई भी भाई को टच नहीं करना है आपको, आप इधर चले जाओ। तो ये हम पब्लिक है ना, नहीं आप बैठ जाओ, आपको उठना नहीं है, इधर उधर, आप उधर चले जाओ, आप एक इधर चले जाओ, बीच में इधर उधर हो जाओ सारे। आशीष भाई आप बीच में खड़े हो जाओ, विघ्न। हाँ, तो पट्टी बांध दो। तो ये गेम बहुत अच्छा गेम है, इसको वॉक ट्रस्ट कहते हैं। तो इसमें अलग अलग विघ्न उत्पन्न करके रख देना है, और वैसे तो वो जो व्यक्ति है उसको बताना नहीं चाहिए कैसा कैसा, अभी जो विघ्न हमने उत्पन्न किए थे चेंज कर दो, आप इधर आ जाओ आप उधर हो जाओ या आगे पीछे हो जाओ। पर आप दिखाई थोड़ी दे रहा है आपको। तो अभी आप इधर पीछे आ जाओ, खड़े हो जाओ, पर गिरने मत देना। सुशील भाई आप खड़े हो जाइए। हाँ अगले गोल घुमा दो। हाँ तो अभी हम लोग आपको गाइड करेंगे, आपको पहुंचना है पीछे, ठीक है। तो आप पीछे मुड़ जाओ अभी। हाँ नहीं बस चलो ठीक है। तो अभी आपको चल आपको वो नागराज भाई तक पहुंचना है, तो आप एक काम करो अपने लेफ्ट में चलो थोड़ा सा। नहीं हमारी बातें आपको सुननी, आपको अपना चलना है। हाँ किधर भी से जा सकते, पर बीच में कोई ये नहीं आना चाहिए। बीच वहां भाई है, आप बीच बीच में आ जाओ, खड़े हो जाओ इधर उधर। कोई को टच रहे सुशील भाई, वहां मत जाओ, वहां कहाँ जा रहे हो आप, गड़बड़ है, उधर से नहीं जाना है। अरे पीछे टर्न हो जाओ एक बार पीछे, अरे माता है, गिर जाओगे माताओं के ऊपर। माता माताओं के ऊपर गिरोगे। अरे वहां नहीं है। इधर 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 राइट राइट में आ जाओ, राइट राइट। सुशील भाई अबाउट टर्न। हाँ अभी अभी ठीक है, अभी सीधा चलो, अभी सीधा सीधा, हाँ एकदम सीधा, हाँ अभी बराबर है, थोड़ा और आगे। अरे वहां नहीं, वो भाई है, यू हैव टू मिस गाइड हिम, यू हैव टू मिस गाइड हिम। राइट राइट प्रॉपर चल रहे हो, हाँ अभी ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है। बस नागराज भाई आ ही गए, 2 मिनट के आगे नागराज भाई है। हाँ बस बस आगे आगे। ए, आप टर्न मत करो रविनेश भाई, आप मत टर्न करो रविनेश भाई, आप टर्न मत करो, आप क्यों उसको गाइड नहीं करना है आपको रविनेश। नहीं 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 पीछे 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 पीछे, पीछे सुशील भाई टर्न बैक। नहीं वो ऑलरेडी पहले गेम अच्छा चल रहा था, बीच में रविनेश भाई ने बिगाड़ दिया। नहीं वो बीच गड़बड़ हो गया, बीच में गेम गड़बड़ हो गया। तो इसे कहा जाता है ट्रस्ट वॉक। एक है खुद खुद को धोखा देना एक है, दूसरों को धोखा देना, पर जब दूसरे हमको धोखा दे तब हम उनके धोखे में बहकावे में ना आए। तो ये थी आज की दो पॉइंट्स, एक बगुला भक्त, एक ज्ञानी तू आत्मा का चित्र। तो आपको ये चित्र आज निकालना है, उसमें अपनी अपनी पॉइंट्स निक डालनी है। और ये है 12 टाइप के सेल्फ डिसेप्टिव बिहेवियर। इसी मुरली में और एक चीज कही है बाबा ने, और जो बहुत पावरफुल चीज है, ये स्मृति दिवस है, कब की मुरली है, 12 तारीख की मुरली है। तो इसमें बाबा ने कहा है कि जैसे शांति स्तंभ है और उसमें अलग अलग लिखा हुआ है, तो तुम भी क्या बन जाओ, शांति स्तंभ मैं हूं, ज्ञान स्तंभ मैं हूं, शक्ति स्तंभ मैं हूं, पवित्रता स्तंभ मैं हूं। ऐसे स्तंभ बन जाओ जो कोई हिलाए नहीं, ऐसे स्तंभ बन जाओ कोई हिलाए नहीं। तो आज अभ्यास कौन सा करना है, जब शांति स्तंभ पर जाओगे, जो यहां रहते हैं वो स्थूल में और जो बाहर रहते हैं वो मनसा में, क्योंकि हमारा इस भट्टी का 21 दिन की एक एक होमवर्क क्या है, एक टारगेट क्या है, रोज 4 धाम की यात्रा करना है। तो जैसे शांति स्तंभ पर जाओगे, तो जब शांति स्तंभ के सामने खड़े हैं तो क्या सोचो, मैं शांति स्तंभ हूं। जब ज्ञान स्तंभ के सामने जाओगे तो क्या सोचो, मैं ही ज्ञान स्तंभ हूं। जब शक्ति स्तंभ के जाओगे तो सामने क्या सोचोगे, मैं शक्ति स्तंभ हूं और मैं पवित्रता स्तंभ हूं। या फिर ये जो शांति स्तंभ का चित्र है वो निकाल के आप उसमें बीच में अपना चित्र डाल दो। एक क्या करना है, अपना ही एक चित्र डाल देना है यहां पर, फोटो चारों तरफ। तो ये शांति स्तंभ, ये ज्ञान स्तंभ, ये शक्ति स्तंभ और इधर पवित्रता स्तंभ। निश्चय में ही विजय है। सुखदेव भाई, ये शांति स्तंभ पर कहां लिखा है? पुरुषोत्तम भाई, निश्चय में ही विजय है, ये शांति स्तंभ पर कहां लिखा है? शक्ति स्तंभ पे किधर? अगर इनका तो कहना है सामने लिखा है, मतलब शांति स्तंभ के वहां लिखा है। नहीं, इनका कहना है शांति स्तंभ के वहां लिखा है, पवित्र, इनका कहना है पवित्रता के स्थान में लिखा है, उनका कहना है शांति के सामने, आपका कहना है शक्ति स्तंभ। शक्ति स्तंभ में राइट या लेफ्ट? इस साइड, करेक्ट। जिस तरफ पवित्रता स्तंभ है, शक्ति स्तंभ के इस तरफ लिखा हुआ है निश्चय में ही विजय है। तो ध्यान से, आप रोज चक्कर लगा रहे हो ना मनसा, तो वो मनसा जब चक्कर लगाते हो पढ़ना भी है, अब गफलत नहीं करो। ज्ञान स्तंभ पर लिखा हुआ है, समय कम है, गफलत नहीं करो। और आबू के बारे में कहाँ लिखा है? कहाँ? शक्ति स्तंभ में, ज्ञान स्तंभ में। ठीक है, तो इस मुरली में ये एक बात कही, तो ये भी एक होमवर्क है। सेकंड, तीसरा होमवर्क बाबा ने कहा है कुर्बानी। हाँ, शांति स्तंभ है, उसमें मैं शांति स्तंभ हूं, मैं ज्ञान स्तंभ हूं, मैं शक्ति स्तंभ हूं, मैं पवित्र स्तंभ। ऐसे स्तंभ बन जाओ जो कोई हिला ना सके, मुरली के महावाक्य है। तो वो शांति स्तंभ का चित्र बना सकते हैं या स्केच, उस पर अपना चित्र चिपका दो कि मैं ही हूं। फिर इसी मुरली में और एक पॉइंट कही है कि तुम अब बाप के गीत गाते हो ना, तो ऐसा कुछ करो कि बाप तुम्हारे गीत गाए। बाप किसके गीत? आपकी गीत कविताएं लिखते हो ना, कल लिखी ना इतनी सारी कविताएं, वाह 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 वाली, तो वैसे बाप तुम्हारी कविताएं लिखे। तो ये एक अगली पॉइंट है कुर्बानी। कुर्बानी अर्थात बाबा ने कहा अपनी कमियों की कुर्बानी, अपनी कमजोरियों की कुर्बानी दो बाबा के सामने। तो ये है पूरी मुरली। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी मुरली की तरफ। दूसरी मुरली बहुत छोटी है और उसमें मुख्य रूप से एक ही पॉइंट है। तुम्हें दो प्रकार की सेवाएं हैं, एक तो है दान करने की सेवा, ज्ञान दान करने की सेवा, ज्ञान देने की सेवा, महादानी बनना। दूसरा है आत्मा इतनी कमजोर है कि ना तो योग लगा सकती है, ना तो ज्ञान धारण कर सकती है, कुछ भी नहीं है उनके पास, शक्तिहीन है। ऐसी आत्माओं को क्या चाहिए? वरदान। तो तुम्हें क्या बनना है? अब वरदानी मूर्त बनना है, शक्तियों का गायन ही क्या है, वरदानी मूर्त का गायन है। आत्माओं को वरदान देना, आत्माओं में बल भरना, आत्माओं को शक्तियां देना, ये सब काम तुम्हें करने हैं। और ये कौन कर सकेगा? जो संतुष्ट है। और यही सबसे बड़ा से बड़ा गुण है, यही सबसे से बड़ा से बड़ा दान है, यही सबसे बड़े से बड़ी विशेषता है, यही सबसे बड़ी से बड़ी श्रेष्ठता है। पर तो जो संतुष्ट है वो ये कर सकता है, और जो संतुष्ट है वो क्या है? प्रभु, वो भगवान को बहुत प्रिय है। जिसके अंदर में बहुत सारी इच्छाएं रहती है, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, असंतुष्टता कीड़ा है जो ब्रेन में घुस जाता है और बेचैनी करता है। अतृप्ति है, और अतृप्ति का संबंध साधनों से नहीं है, वो संस्कार है। वो साधन मिल भी जाए तो भी अतृप्ति रहेगी रहेगी, क्योंकि उसका प्राप्ति से संबंध नहीं है। ये सेंटर अच्छा नहीं है, ये बहन अच्छी नहीं है, यहाँ की पालना अच्छी नहीं है, यहाँ की ड्यूटी अच्छी नहीं है, यहाँ की सेवा के रूल्स अच्छे नहीं है, ये रूम अच्छा नहीं है, कितनी सारी कंप्लेंट है, हर चीज में कंप्लेंट ही कंप्लेंट है, कोई भी अच्छा नहीं है यहाँ पे। तो असंतुष्टता क्या है? कीड़ा है। वो कीड़ा अंदर जब घुस जाता है तो क्या करता है? बेचैनी करता है। तो जो संतुष्ट है, जो मिल गया, जो प्राप्त हो गया, उसमें तृप्त है। कंपैरिजन इज द एनिमी ऑफ सेल्फ लव। दूसरों से कंपेयर करना खुद को, इसको ये मिल रहा है मुझे क्यों नहीं मिलता। इसलिए पहले भी कहा, हर व्यक्ति को वही मिलना चाहिए, मिल रहा है, जो उसका जन्म जन्म का भाग्य है, जिसकी उसके लिए योग्यता है, जिसके संकल्प ही वो थे, जिसकी कुर्बानी, जिसका समर्पण ही उसे वहां तक ले आया है, और किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। अंदर बेचैनी है, अंदर घबराहट है, अंदर सेल्फ डाउट है, वो भी उसके ही संकल्पों का परिणाम है। लोकप्रिय, ये परिणाम है लोकप्रिय, इसके पीछे जाना नहीं, लोकप्रियता के पीछे, नहीं तो बहुत खतरा है। सारी दौड़ ही तो इसकी है संसार में, पब्लिसिटी। तीसरा, स्वयं प्रिय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लव, लव फॉर सेल्फ। खुद को इतना हीन नहीं समझना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, ना ही दूसरों को समझना है, पर उससे पहले खुद को नहीं समझना है। तो इन तीनों में अगर फर्स्ट नंबर पे कुछ है तो वो है सेल्फ, दूसरा है प्रभु, इसका तो छोड़ ही दो, समाज का, संसार का, कि मैं संसार का प्रिय बन जाऊं, इसमें तो माया ही माया है, बहुत खतरा है उसमें। पब उसको वो अगर मिल भी गया तो भी उसको मेंटेन करने में भी खतरा है, हाई कॉस्ट है मेंटेनेंस की। तो ये दूसरी मुरली थी, टीचर से मुलाकात की बातें हैं, तो वो सब सेल्फ स्टडी करनी है। यहाँ पर केवल मुरलिया जो है, जहाँ याद प्यार तक, वहीं तक डिस्कस होगी, बाकी जो वो है पार्टी से मुलाकात वगैरह वगैरह, ना तो एग्जाम में वो आएगा और ना ही यहाँ डिस्कस होगा, वो सेल्फ स्टडी आपको करनी है। तो आज हमने क्या क्या देखा, बगुला भगत नहीं बनना है, दूसरा देखा ज्ञानी तो आत्मा बनना है, तो उसके लिए वो ताज, तक, तिलक, गहने, गोल्डन स्पून इन माउथ, तो क्या तुम्हारा तो डायमंड है, हीरा ही, जीवन ही हीरा बन गया है। तो ये सोचते रहना है अकेले में, एकांत में, और फिर ये देखे सारे क्या है, ये जैसे कि 12 बंदर थे, 12 के 12 बंदर कहाँ पहुंचे, जंगल में, वहां पे उन्होंने एक झाड़ देखा, और झाड़ में क्या थे, बहुत सारे केले लगे थे। पहले नंबर का बंदर कौन सा है हमारा, डिनायल, तो वो कहता है कि मुझे तो आम केले दिखाई नहीं दे रहे, डिनाय कर रहा है ही नहीं। दूसरा है रेशनलाइजिंग बंदर, वो कहता है कि अभी पके नहीं है, कच्चे है, तीसरा प्रोजेक्टिंग, वो कहता है ये दूसरे बंदरों ने चुरा लिए, इतने ज्यादा थे पहले खुद ही चुराए हैं, पर ब्लेम किसको कर रहे हैं, दूसरों को। प्रोजेक्टिंग डिस्प्लेसमेंट, उसको मिले नहीं तो बाजू के पत्थर को जाके किक मार रहा है, डिस्प्लेसमेंट, इधर का गुस्सा उधर। फिर रिप्रेसिंग, वो तो भूल ही गया कि बंद, ये भी देखा है सौद बनाना करके, अंदर ही छिपा दिया उसने वो को कि मैंने अंदर ये फॉरगॉट शी सॉ द बनानास, बनाना देखे ये भी भूल गए, या फिर दबा दिया अंदर। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, वो कहता है ये झाड़ किस, इसका स्पीशीज कौन सी है झाड़ की तो ये बनाना खाने से मतलब है, पर झाड़ कौन से स्पीशीज को क्या कहेंगे, प्रजाति के ये झाड़ है उस पर चिंतन कर रहा है। और मिनिमाइजिंग माइक, मिनिमाइजिंग बंदर क्या कहता है, वो कहता है बहुत ही कम है, हाँ बहुत ज्यादा नहीं है। ब्लेम शिफ्टिंग वाला कहता है कि हवा जो है बहुत जोर से बह रही है, इसलिए हम इसको नहीं तोड़ पा रहे, हवा को ब्लेम दे रहा है, ब्लेम कर रहा है। सेल्फ डिल्यूजन कहता है कि मैं अकेला ही केवल ये केले देख रहा हूं और कोई नहीं। और लाइंग वाला क्या कहता है कि मैं भूखा ही नहीं हूं, मुझे भूख ही नहीं लगी है, ये लाइंग। अवॉइडिंग वाला वो छुप गया पीछे, हाँ वो ये खाने में खतरा है, वो जाके छिप गया, तोड़ना पड़ेगा। सेल्फ जस्टिफिकेशन, जस्टिफाइंग, वो कहता है सारे केले मेरे हैं। तो ये 12 चीजें हैं, 12 बंदर, तो ये सारी चीजें। लास्ट एक व्यक्ति जा रहा है, धार्मिक व्यक्ति है, पंडित जी है, पुजारी है, बारिश आ रही है जोर से, वो पहले बारिश नहीं आ रही थी, जा रहा था तो धीरे धीरे चल रहा था, बारिश आने लगी तो दौड़ने लगा। एक व्यक्ति अपने घर में बैठा है, कहता है पंडित जी आप क्या कर रहे हो, भाग क्यों रहे हो? वो कहते हैं देखते नहीं बारिश आ रही तो, बोलते हैं कि अरे ये परमात्मा की बारिश है, तुम बारिश का अपमान करते हो अगर तुम भागे, तुम धार्मिक व्यक्ति हो तुम्हें तो धीरे चलना चाहिए। तो बेचारा पंडित जी धीरे धीरे चलता है, फिर उसे अपनी चिंता हो जाती है लोग क्या कहेंगे, पूरा भीग जाता है, बीमार पड़ जाता है, निमोनिया हो जाता है। कुछ दिनों के बाद ये जो व्यक्ति जिसने सलाह दी थी ना और उपदेश दिया था, श्रीमद् दी थी, अब वो आ रहा था तो अचानक बारिश आ रही है, तेज बारिश आ रही है, तो ये पंडित जी जो है ये अभी घर में बैठे हैं देख रहे हैं। तो बारिश पहले नहीं आ रही थी जब वो चल रहा था, तो बारिश आने लगी तो ये जो व्यक्ति था ये दौड़ने लगा। तो ये पंडित जी क्या कहते हैं उससे कि तुमने मुझे कहा था कि तुम भगवान का अपमान कर रहे हो, अब तुम भी तो भगवान का अपमान कर रहे हो। वो कहते हैं मैं भगवान का अपमान थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो उसकी जो बारिश है मैं उस पर पैर ही नहीं रखना चाहता, ये उसका अपमान होगा इसलिए मैं तेज चल रहा हूं, उसकी बारिश जमीन पर गिर रही है, मैं जमीन पर पैर रखूंगा तो भगवान का अपमान होगा कि नहीं, इसलिए मैं तेज चल रहा हूं। तो ये सब मैकेनिज्म से, डिफेंस मैकेनिज्म इनको कहा जाता है, सेल्फ जस्टिफिकेशन। कोई भी इन 12 में से अपने आप को इसको सेल्फ जस्टिफाई किसी में भी डालो, डिनायल। तो ये सारे व्यक्ति अनकॉन्शियसली यूज करते रहता है, ये टूल्स है अपने आप को बचाने के लिए। क्या हो गया क्लास में नहीं दिखते आजकल, हाँ थोड़ी सेवा थी ये तो कॉमन है तबीयत ठीक नहीं थी, कॉल आ गया था वगैरह वगैरह जो भी है, बस मिस हो गई, हाँ बस मिस हो गई, और बस मिस हो गई तो क्यों मिस हो गई, ठीक नहीं लग रहा था, आई एम नॉट वेल, नॉट फीलिंग वेल, रात को देरी से सोए, पेशेंट आ गए थे क्या करे, थक कितने गए थे, तुम्हारी तो सेवा है नहीं कुछ। अच्छा ओम शांति।
आंधी तूफानों में खो न जाऊं
सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा, यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ानी तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा।